नमस्कार आदाब सत श्रीकाल श्रोताओं, मैं रफी साझा मंच मोबाइल वाणी से आज आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ। मेरे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े हैं मनोहर लाल कश्यप जी, जो बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं, और हम बात करेंगे कि जो कानूनी कार्रवाई होती है और जो अदालती चक्कर लगता है वो एक आदमी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन के पेश आता है। उन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे मनोहर जी से, क्योंकि वो कई सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और लगातार जो है अदालती कार्रवाई में उलझे रहते हैं। तो अच्छा होगा कि वो अपनी पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर लोगों को साझा करें कि अदालती कार्रवाई एक आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल। तो स्वागत है मनोहर जी आपका, और बताएं कि क्या हुआ था और किस केस में आपका मुकदमा अभी जो है चल रहा है।
रफील जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपने हमारे इस मुद्दे की बात को सामने रखा है और शायद सरकार तक भी पहुंचेगी, मैं आशा करता हूं, और कुछ ना तो कम से हमारे श्रोता इन एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को जानेंगे। तो रफील जी, हमारी जो फैमिली प्रॉपर्टी थी उसमें, जैसे हमारी बहन की प्रॉपर्टी थी, उनके कोई आस औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, और ना ही उनके उस हमारे जीजा की तरफ से कोई वारिस था। तो उस प्रॉपर्टी के कानूनी हकदार हम बनते थे। हमारे में ऐसा हुआ कि हमारा भाई एक रमेश है, जो कि जिसके ऊपर हमने केस किया, वो प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गया और हमको भाई नहीं मान रहा, मतलब वो। तो इस केस को हमने, जो प्रॉपर्टी हमारी वो पीतमपुरा में है, उत्तरी पश्चिमी जिला में, तो रोहिणी की एक कोर्ट लगती है। रोहिणी कोर्ट में हमने केस फाइल किया था 22 दिसंबर 2015। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितना समय लग गया, लेकिन कोर्ट का जो रवैया वो कहाँ तक, अभी तक कुछ नहीं पहुंचा। जब हमने 22 दिसंबर 2015 को हमने केस फाइल किया था, तो पहली तारीख हमारी लगी थी 3 फरवरी 2016 को, और अभी तक हमारी 43 तारीख पड़ चुकी है। अब मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि पहले जज हमारे थे, सबसे पहली जो तारीख लगी थी योगेश खन्ना जी की।
ये कानूनी सलाह के लिए जो है आम आदमी, जब कोर्ट की कार्रवाई चलती है, तो इन सब मसलों को समझने के लिए किसके रास्ते जाता है, कौन सा दरवाजा खटखटाता है, वकील के पास जाता है, किसकी सलाह लेने सलाहकारों तक पहुंच करता है? सबसे पहले केस दाखिल करने से पहले, जब आपने केस दाखिल किया होगा तो उससे पहले सलाह ली होगी, तो किसका दरवाजा खटखटाया, किससे उचित समझा?
सबसे पहले तो रफीक जी, हम लोग आपस में बात करते हैं, जिससे जिसके ऊपर केस करना है या जो कब्जा करके बैठा है, जिससे हमारा विवाद है उससे बात करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसको निपटा लिया जाए कोर्ट में जाने से पहले या पुलिस थाना करने से पहले। उससे जब वो नहीं मानता या धौंस देता है या धमकी तक दे देता है, तो फिर आदमी अपने सलाहकारों से, किसी अपने जैसे प्रधान होते हैं, कोई तजुर्बेकार होते हैं, उनके पास जाते हैं या पुलिस तक में भी चले जाते हैं, हल्की फुल्की शिकायत करते हैं। पुलिस इन मामलों को, जो विवाद होते हैं केस, उनको नहीं लेती, कई बार वो क्राइम के इस किस्म के केस लेते हैं। तो फिर आदमी लास्ट में जब नहीं निपटता, तो वो सीधा कोर्ट में जाता है, वकील से सलाह करता है। तो वकील से सलाह यही देता है कि आप इस तरीके से पहले बातचीत कर लो, हल्का एक नोटिस दायर करते हैं, अगर नोटिस पे मान जाते हैं, बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर केस फाइल किया जाएगा। तो सारी प्रतिक्रिया से हम गुजर चुके थे, भाई से बातचीत भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो नहीं माना। फिर हमने ये केस फाइल किया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 20 दिसंबर 2015 को।
तो एक कैसा अनुभव रहा इतने साल का, जो कोर्ट के चक्कर लगाए आपने, और क्या आप कभी जब अदालत गए तो वहाँ की जो अदालत की कार्रवाई को समझ पाए? बाद में वकील से आपको कोई आदेश की कॉपी मिली, या समझने में आपने कोर्ट के बाद अलग से उनके साथ बैठ के उनकी भाषाओं को समझने की कोशिश की? किस भाषा में आपको, जो समय समय पे जो डेट लगती थी, जो उसके आदेश होते थे, वो किस भाषा में रहते थे?
ऐसा ये वकील साहब, हम सबसे पहले बात तो, जो मेरे संग चार भाई, उन्हें एक भाई पे केस किया, हम चारों भाई उपस्थित रहते हैं कोर्ट में, किसी भी तारीख पे हमने नागा नहीं किया। तो जो हमारी जो बातें होती हैं, वकील और वकील करते हैं, और जज साहब जो करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं बातें, वो थोड़ी बहुत तो हमारी समझ में आती है, लेकिन हम कोर्ट खत्म होने के बाद में, समाप्त होने के बाद में, जब हम बाहर निकलते हैं, तो हमारे वकील साहब हमको विस्तार से बताते हैं कि आज ये हुआ, अब हमको ये करना है, अब वो करना है, ये करना है, ये तैयारी करनी है, इसकी टाइपिंग करनी है, इसकी दरखास्त लगानी है, वो हमको विस्तार से समझाते हैं।
तो हिंदी में मतलब जो है, आपको कोई कॉपी उसकी, जो डेट में जो बहस हुई उसकी जो है तहरीर है, जो लिखा जाता है, वो आपको कभी मिली है हाथ में, उन्होंने फोटो कॉपी करा के कभी दी हो, या वो हिंदी में रहती है या इंग्लिश में रहती है?
रफीक जी, वो मैं बताऊँ की वो इंग्लिश में होती है, और वो उसी दिन भी मिलती भी नहीं है, वो दो चार दिन के बाद में होती है वो करी मिलती है, उसकी फिर हम वकील साहब से मांगते हैं तो फोटोकॉपी हमको मिल जाती है।
तो क्या आप हिंदी में या अपनी भाषा में इस कॉपी को प्राप्त करना चाहेंगे अगर भविष्य में ऐसी सुविधा आपको मिले?
नहीं, मैं तो चाहूंगा कि हिंदी में भी मिलनी चाहिए कि जिससे कि हम लोग को भी मतलब किसी से सलाह मशवरा ना करना पड़े, हम खुद पढ़ लें हिंदी भाषा को, हम खुद जान लें, काफी कुछ तो जानेंगे उसमें, हिंदी में होना चाहिए मतलब
जी। तो आप इतने सालों से मतलब 4-5 साल से 6 साल हो रहा है आपको मुकदमा करते हुए और जाते हुए, तो अभी तक अलग अलग चीजों पर इस केस में अभी तक कितना पैसा आपका खर्च हो चुका है कि वकील परामर्श करने में या जो प्रशासनिक शुल्क जो होता है, टाइपिंग है, फोटो स्टेट है और केस दाखिल करने की जो फीस थी और केस में लिप्त होने के कारण आप जो है फैक्ट्री भी नहीं जा पाते, उस दिन छुट्टी करना पड़ता है।
हाँ। रफीक जी, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ
लगभग कितना खर्च हो चुका है।
रफीक जी, सबसे पहली बात तो इसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते इस बात को, क्यों कुछ फीसें इस किस्म की होती है जो नंबर दो से होती है, मैं स्पष्ट बात में कहूँगा। ठीक है, तो हम और आपको पता है कि कोई वकील ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ कहा तो वो कोर्ट में उठकर चल दे जब तक उनकी टेबल पे पैसा न रखा जाए।
बिल्कुल बिल्कुल।
और वकीलों के अपने अपने तरीके होते हैं, ग्राहक से वो हमको ग्राहक समझते हैं, रिश्तेदार नहीं समझते कि इस चीज के इतने पैसे लगेंगे, टाइपिंग के इतने लगेंगे, इस पे डाक टिकट इतनी लगेगी, फलाना लगेगा, ढिंका लगेगा और इतने पैसे हमको पहले दे दो, 1,00,000 रुपए लगने हैं तो 50% पहले दे दो, हर तारीख पे इतने दे दो। तो अभी तक हमारा इसमें जो वकील को दिया, वकील हमारे पर्सनल है, जान पहचान के, इसलिए थोड़ा अच्छा भी कर रहे हैं वो जल्दी। तो इसमें ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ये होता है, मैं आपको विस्तार से ये समझाऊं कि मैं बहादुरगढ़ में रहता हूँ और रोहिणी कोर्ट में जब जाना होता है मुझे पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, एक तो ये नुकसान हुआ। और जो हमारा किराया भाड़ा, सारा दिन का थकना हारना, शाम को कई दफा 4 बजे डेट लगती है, हम सवेरे 9 बजे कोर्ट में पहुंच जाते हैं, 9:30 बजे पहुंच जाते हैं, भागते दौड़ते हम इसलिए पहुंचते हैं कि हम अगर टाइम पे नहीं पहुंचे, आवाज लग गई तो हमारा केस खिलाफ हो जाता हमारे से। अब चाहे भले ही जज साहब हमको चाहे 4 बजे बुलाएं तो हमारा वो हमें माननीय होगा, सारा दिन खराब। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी तक इन केस में होता क्या है कि हम जब जाते हैं तो आज जज साहब नहीं आए, आज फलाना वकील नहीं आया सामने वालों का, आज हमारे वकील साहब की तबीयत खराब है, मतलब हमारी तारीखें आधी तो बेकार जाती हैं।
हाँ, तो जब आप कभी आपको ये महसूस हुआ है कि आप कोर्ट गए हों और आपको लगा हो कि आज का आना एकदम बेकार हो गया है, आज तो मेरी जरूरत नहीं थी, तो ये कितनी बार ऐसा लगा कि आपका वकील को भी एहसास हो कि आपका आना आज बेकार था, व्यर्थ था और आप न जाते तो भी काम चल जाता, ऐसा कितनी बार आपके इन 6 सालों में हुआ?
ऐसा है कि ज्यादातर ऐसा हुआ कि हमको बेकार महसूस हुआ। अब ये देखें ना रफीक जी कि कहां 2015 का केस और कहां 2021 है, अभी तक रिजल्ट कुछ भी नहीं है, और जबकि हमारा ये है कि हम सगे भाई हैं, सगे बहन थी, उसको हम साबित नहीं कर पा रहे। ये होता क्या है कि 2-3 महीने के बाद में जज बदल जाते हैं, जब जज साहब समझ जाते हैं केस को, फाइनल होने को होता है तो जज साहब दूसरे बदल जाते हैं, फिर वो अपने तरीके से केस पढ़ते हैं, 3-4 तारीख वो दे देते हैं हमारे को केस पढ़ने के लिए, फिर टाइम और जब समझते हैं केस को तो फिर तीसरे, अब तक हमारे 4th जज हैं
जी। तो ये एक दिक्कत है कि जज बदलने से भी आपके पास समस्याएं आती रहती हैं, फिर उसको रिव्यू करना पड़ता है उनको।
जी हाँ, रिन्यू करना पड़ता है उनको, जज साहब को दोबारा से फाइल पड़ते हैं वो।
तो अगर ऐसी कोई सुविधा जो है व्यवस्था की जाए कोर्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से, कि अगर ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे आप ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हो, सुनवाई की तारीख ले सकते हो, आदेश प्राप्त कर सकते हो और अदालत की कार्रवाई को ऑनलाइन भी देख सकते हो, और यदि देखना ना चाहें तो फोन पर ही कार्रवाई सुन सकें, अगर ऐसी सुविधा दी जाए तो ये कितना फायदेमंद होगा, क्या ऐसी सुविधा आप लेना चाहेंगे?
लतीफ जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी जब कोरोना का टाइम चल रहा था हमारे देश में तो कोर्ट बंद थी, तो ऑनलाइन हो रही थी, मोबाइल पर हो रही थी, तो हमने वकील साहब से कहा, वकील साहब हमारा समय बहुत खराब हो रहा है, इसको अटेंड करिए। तो वकील साहब ने ये कहा कि ऑनलाइन हम करेंगे तो हम जज साहब से कुछ कहेंगे और फोन पे हम कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और सुन लेंगे, तो फैसला गलत हो सकता है, हम कोर्ट में पेश होके ही करेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा।
तो मतलब ये जो तकनीक है इस पे विश्वास करने वाली बात है, अगर ये बहुत अच्छी तरीके से चले और पूरा रिकॉर्डेड ही होता है तो इसमें कुछ आपको लगता है कि हो सकता?
हाँ, बहुत अच्छा हो सकता है इसमें, लेकिन साफ सुथरा, अच्छे तरीके से, सुपर क्वालिटी से हो तो अच्छा हो सकता है। ये कि हम बोल कुछ और रहे, रिकॉर्ड वहाँ कुछ और हो रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं, वकील साहब कुछ और बोल रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, तो इसके लिए सुपर क्वालिटी के नेटवर्क होना चाहिए।
तो आपके पास स्मार्टफोन है
जी,
तो अगर अदालती कार्रवाई ऑनलाइन आप देखना पसंद करेंगे कि आपको फोन पे ही ये कार्रवाई आपको दिखे और बहुत क्लीन दिखे, मतलब नेट इतना अच्छा हो कि आपको सब साफ नजर आए और सब रिकॉर्डेड हो, सुनाई भी दे, तो इसको पसंद करेंगे आप?
बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा ये, तो कि हमारा आने जाने का समय खत्म होगा, एक आध दो घंटा खराब होगा, हम अपने कारोबार को भी देख सकते हैं, ड्यूटी को भी देख सकते हैं, अपने परिवार को भी देख सकते हैं, सबसे बड़ी तो टाइम बर्बाद से बचेंगे।
और एक ऐसा विकल्प भी है कि जैसे हम लोग साझा मंच में भी मिस कॉल करते हैं, कॉल पलट के आती है, जिसे IVRS जो तकनीक हम कहते हैं, अगर ऐसा ही कुछ तकनीक हो कि मिस कॉल करके आप जो है विकल्प चुन के जो है आपको वो सुनाई दे, वहाँ के कोर्ट में जो बहस चल रही है उसको जाने के बजाय, अदालत जाने के बजाय क्या सुनना पसंद करेंगे कि अगर मिस कॉल करके आप?
हाँ बिल्कुल, अच्छी सुविधा है ये मेरी तरफ से रफीक जी, एक और सलाह है अगर
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
जिस प्रकार से हम जो व्हाट्सएप यूज करते हैं,
ऐप कोई अगर बनाया जाए,
हाँ ऐसा ऐप कोई बनाया जाए कि जिसमें मेरा केस है और मेरे भाई का केस है, तो दोनों पार्टी के पास वो पूरी रिपोर्ट आज तक की पहुंच जाए, चाहे दो दिन तीन दिन के बाद में पहुंचे कि ये इसका इफेक्ट ये है, इसका इफेक्ट ये है और अगली तारीख ये है, आज उसने ये बयान दिया, आज उसने ये किया, उसने ये किया, ये व्हाट्सएप पे आ जाए हिंदी में।
एक सवाल ये है मेरा कि अगर अदालत आपको ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध कराए जहां आपको केस दाखिल करने से जुड़े खर्चे, केस जीतने का कितना चांस है, कितना प्रतिशत उम्मीद है केस जीतने की, ये बता दे कि आपको कोई एक पूर्व सूचना मिले कि लगभग इतना लगेगा, तो इतना खर्च होगा, इतने प्रतिशत आपके चांस हैं जीतने के, तो क्या ऐसी सेवा लेना चाहें?
ये तो बहुत अच्छी सेवा होगी इसमें, लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ कोई नहीं कह सकता, कोई वकील ऐसा नहीं होता कि जो पूरी गारंटी किसी चीज की ले, वो कहता हम कोशिश करेंगे
नहीं, तो ये इसमें ऐसा हो कि आपको लगभग प्रतिशत बता दें कि आपके पास इतने इविडेंस है, इतने सबूत हैं, इतने कागज हैं, तो आपके चांसेस बढ़ रहे हैं जीतने के, आप इसके अधिकार हैं, आप इस केस को, तो ये अगर एक उम्मीद आपको बता दी जाए कि इस उम्मीद इतनी उम्मीद है, 100% उम्मीद है, यहाँ पे 10% उम्मीद है, यहाँ 5% है, तो क्या लेना पसंद करें?
बिल्कुल सब अच्छा रहेगा हमारे लिए, मतलब हौसला बना रहेगा केस लड़ने तक, चाहे वो 5 साल की जगह 6 साल लग जाए कि हमारे पक्ष में इतना परसेंट तो है ही है।
अच्छा, जब आप अदालत जाते हैं और कार्रवाई चल रही होती है और वकील आपस में बात करते रहते हैं, दलीलें चलती हैं, तो जो कानूनी तकनीक की जो शब्दावली होती है, जो उनकी धाराओं में बातें होती हैं, जो जी भविष्य में, क्या आप अदालती कार्रवाई को सुनना चाहते हैं, ऐसी की जो बातें होती हैं वो समझ पाते हैं और क्या सुनना चाहते हैं?
जी हाँ, मैं तो बड़ा रुचि रखता हूँ और मैं जिज्ञासा रखता हूँ कि मैं ऐसी चीजों को मैं भी जानूँ कि आज हमारे जज साहब ने हमारी तरफ से क्या कहा और सामने वाले ने क्या कहा, इससे अनुभव आदमी का बढ़ता है, कम से कम हमारे लिए, दूसरे के लिए भी बढ़ेगा।
अच्छा, जब वाद विवाद आप लोगों के बीच में या कानूनी विवाद होता है गाँव में या क्षेत्र में, तो कानूनी सलाह लेने के लिए सबसे पहला रास्ता कौन सा खटखटाते हैं कि पहले किससे बात की जाए, जो कई सालों तक मुकदमा लड़ चुका है या वहाँ का कोई प्रभावशाली व्यक्ति है या पुलिस वाला है या विधायक है या थोड़ा उस एरिए का एक ऐसा आदमी है जिसकी लोग बात मानते हैं, तो सबसे या डायरेक्ट वकील को चुनते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में आप किसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कानूनी कार्रवाई?
सबसे पहली बात तो ये भी देखा जाता है कि जैसे अपने भाई बंधुओं में, अपने रिश्तेदारों में किसने किस किस्म से केस जीता हुआ पहले, तो ऑटोमेटिक आदमी वहाँ पे जाता है कि भाई आपने कैसे कैसे क्या किया और हमारे संग ये वाली प्रॉब्लम है तो हम क्या करें,
तो मतलब
जिसका अनुभव हो वह उसके पास जाएंगे सबसे पहले, कौन चाहेगा कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च करने का, टाइम बर्बाद करने के लिए।
एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा क्योंकि आप हमेशा से अभी कई सालों से फैक्ट्री में हैं, एक बहादुरगढ़ की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत सारी फैक्ट्रीज होके गुजरे हो, फैक्ट्री के मजदूरों की बीच बीच में बात भी उठाते रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपने इस फैक्ट्रियों में देखा, क्या ऐसी भी कोई फैक्ट्री है जहां प्रबंधक मैनेजमेंट के द्वारा कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया हो कि श्रमिकों और मजदूर साथियों को कानूनी सहायता या परामर्श जो है उपलब्ध कराया जाए? कि उनको दिया जाए कि उनको जानकारी मिले कानूनी अधिकारों के बारे में या इस टाइप, या मैनेजमेंट के लेवल पे कंपनी लेवल में क्या ऐसी कोई सुविधा दी जाती है आज तक?
देखिए रफी जी, स्पष्ट लफ्जों में यही है कि कोई नहीं चाहता कि मजदूरों को कोई ज्ञान मिले उनके फेवर, इनको जहां है वहीं के वहीं रहे, मतलब इनको हम इस्तेमाल कर सके। मेरे को कम से कम 10-11 साल हो गए कंपनी से में काम करते हुए, कंपनी के एक्सपीरियंस को, कोई नहीं चाहता कि मजदूरों को कोई अच्छी जानकारी मिले, वो अपना हक ले।
अगर एक चीज है कि जो अदालती कार्रवाई चलती रहती है वो फोन के माध्यम से अगली सूची या अगले वितरण के बारे में या अगली तारीख जो है पूछने पर, जैसे हमारा पूछो और जानो चलता है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपको अपने अपने केस के बारे में वितरण जानकारी हो जाए या जो है आपको अगली केस डेट मालूम हो जाए, अगर ऐसी सुविधा आपकी नजर में फोन के माध्यम से शुरू करी जाए तो क्या इसको उपयोगी होगी, क्या फायदेमंद होगी लोग?
हाँ रफीक जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वैसे तो इस चीज का आजकल ऐप आ गया है, ऐप पे जानकारी काफी कुछ मिल जाती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो ऐप भी जब आधी जानकारी हमारे पास होगी तब उस ऐप में डालेंगे तभी हमको मिलेगी। जरा सा कहीं से चूक गए हमारे को कोई अगली तारीख का नहीं पता होगा तो ऐप में भी नहीं पता लगेगा, मतलब कंटिन्यू उससे जुड़े रहेंगे, कुछ हम जानकारी उसमें डालेंगे तभी पता लगेगा ऐप के माध्यम से।
अच्छा क्या आपने अभी कभी FIR कोर्ट में याचिका आपने दी है या किसी ऑनलाइन याचिका केस रजिस्टर से इतना आप गुजरे हैं, याचिका दायर करने के जो दौरान आपको किस तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ता है? क्या आपको पुराने केस के आदेशों फैसलों की कॉपी देखने समझने का मौका मिलता है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट के आदेश की कॉपी पढ़कर पूरे फैसले को समझा जा सकता है? क्या लगता है कि अगर उसकी कॉपी आपको मिल जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगी वो भाषा, या किसी वकील की या किसी एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ती है?
और वकील की सहायता लेनी पड़ेगी रफीक जी, तो कुछ भाषा ऐसी होती है जो हम लोग नहीं समझ पाएंगे।
अच्छा विस्तार से अगर समझना है और इनके निर्णय को समझने के बाद आप कोर्ट जाने का केस दाखिल करने का फैसला ले सकते हैं, अगर उसके बाद अगर आपको ये मिल जाता है, ये कॉपियां मिल जाती हैं और समझ जाते हैं तो फिर आप कोर्ट जाने का रास्ता निकाल सकते। मेरा कुछ सवाल है एक, कि क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन मामलों का निवारण, आवेदन भरना, कोर्ट के आदेश, निर्णय तक पहुंचना, आपके कोर्ट के साथ होने वाले अनुभव में सुधार लाएगा? ये जो चीजें हैं क्या लगता है ये लाएगा ऑनलाइन अगर और तेजी से, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन शामिल नहीं हैं अभी, बहुत लोग जो हैं कोर्ट में ही, तो क्या लगता है अगर इसको पूरी तरीके से उतारा जाए जमीन पर तो क्या ये फायदा करेगा?
नहीं फायदा तो करेगा, समय की बचत हो सकती है, केस जल्दी निपटाए जा सकते हैं।
अच्छा मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि यदि ग्राम वाणी कोर्ट को अधिक उपयोगी बनाने में आपकी मदद के लिए एक फोन ऐप डिजाइन कर सकती है तो आप इस पर क्या सुविधा चाहेंगे? अगर कोई एक ऐप बनाती है तो आप क्या चाहेंगे उसमें ऐसी ऐसी क्या क्या चीजें हों उस ऐप में, ग्राम वाणी अगर बनाती है तो, जिससे आम आदमी को लाभ?
इसमें ये है कि रफीक जी की जैसे कुछ बातें आदमी वकील से भी नहीं पूछ पाता अपने, और ना कई वकील बताना चाहते हैं, कई वकील आपको बताऊं रफीक जी, कुछ वकील ऐसे होते हैं कि भले ही हमारा केस है हमारी समझ में नहीं आया, हम बाहर निकल वकील साहब से पूछेंगे कि वकील साहब आज क्या हुआ कैसे होगा, तो कई दफा वकील झाड़ देता है, बेइज्जती कर देते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या लेना, केस तो हम लड़ रहे हैं, तुम चुपचाप अपने केस, हम जैसे कह रहे हैं आप कोर्ट में आते रहो, पैसा खर्च करते रहो, बाकी केस में लड़, ये समस्या आती है।
तो ये एक जो दायर करता है वो उसके ऊपर कितना असर करती है ये बात, मतलब उसके अंदर एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अब इसी का कहना सुनना है, या इसके एवज में आदमी सोचता है ये ज्यादा वो दिखला रहा है तो चलो कोई दूसरा वकील ढूंढते हैं, तो ये क्या इस टाइप के भी ख्याल आते हैं कि ये तो हमें बार बार झाड़ रहा है कुछ पूछने पे?
रफीक जी ये तो कई बार होता है कि आदमी 10-10 बार वकील बदल चुका होता है।
तो उसमें क्या मेन वजह क्या होती है वकील बदलने की, कि उसको केस नहीं समझ में आता या वो अपने मुवक्किल को अच्छे से नहीं समझ पाता कि अपने क्लाइंट को समझा पाए कि हम
आजकल रफीक जी ज्यादातर ये हो रहा है कि जैसे मैं गरीब आदमी, मैंने केस डाल रखा, मैंने फाइल कर दिया केस किसी के ऊपर, मुझ पर पैसा कम है, मैं वकील साहब को पैसा कम दे पा रहा हूँ, जो गलत आदमी है उसके पर केस गया है तो वो केस लड़ने के बजाय हमारे वकील को ही खरीद लेते हैं, वो वकील हमारे से उल्टा चलने लग जाते हैं, ये कारण होता बहुत दफा।
तो मतलब भरोसा बहुत कम रह गया
वकील नहीं रह जी।
तो वकील करने के बाद भी वकीलों पर भरोसा नहीं है और वकील दोनों तरफ से भी पैसे कभी कभी बना लेते हैं, ये डर रहता।
जब उनको पता है कि मनोहर लाल केस जीत नहीं सकता और मेरे को यहाँ मनोहर लाल से 25,000 मिलने हैं, यहाँ से मेरे को 50,000 मिलेंगे जो कुछ नहीं करने के, तो आदमी कौन सा रास्ता सुनेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि जो आपका अनुभव रहा, जो खास करके वकीलों को लेके जो आपने ये बात बताई, और जो जज जो है ट्रांसफर हो जाता है या रिटायर हो जाते हैं, वो उस स्थिति में एक जो उम्मीद लगाए एक जो है बैठा रहता है इंसान, उसके ऊपर क्या गुजरती है, ये बहुत महत्वपूर्ण न्यायालय की बातें और अपना अनुभव जो शेयर किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे मनोहर लाल जी को, जो बता रहे थे कि अदालती कार्रवाई एक आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल है और किस तरीके से वो धक्का उसने खाता है और भरोसे पे ये रहता है कि आज नहीं कल हमें जीत मिलेगी। यदि आप भी कोई बात कोई खबर यहाँ पर साझा करना चाहें तो साझा मंच मोबाइल वाणी खबर सुनने के दौरान नंबर 3 दबाकर अपनी बात साझा करें। धन्यवाद।